नमस्कार भारत, 11 अक्टूबर दिन गुरुवार, मैं हूं दिनेश सुप्रेती। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण की फ्रांस यात्रा से ठीक पहले फ्रेंच वेबसाइट मीडिया पार्ट का बड़ा दावा।
कॉन्ट्र पार्टी, ये उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है फ्रेंच में। इसका मतलब होता है आप कुछ दीजिए, वापस में आपको कुछ मिलेगा।
भारत में ओडिशा के तटवर्ती इलाके से टकराया चक्रवाती तूफान तितली और अमेरिका के फ्लोरिडा में माइकल ने मचाई तबाही।
One of the things that must be said is it's not so easy for some of these people to leave.
जयपुर में जीका से निपटने के राज्य प्रशासन के दावों में कितना है दम?
ये कचरा उठाने के लिए नहीं आते, आवाज देते हैं, इनको आवाज देते हैं गाड़ी वालों को, ये जो झाड़ू लगाने के लिए आते हैं झाड़ू तो लगाते नहीं है।
होगी अखबारों की भी समीक्षा, लेकिन पहले सुनेंगे विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार सुनिए सर्वप्रिया सांगवान से। तूफान माइकल अमेरिका के फ्लोरिडा शहर के तटों तक पहुंच गया है। ये तूफान श्रेणी 4 में तब्दील हो गया है, यानी अत्यधिक खतरनाक तूफान। अमेरिका के राष्ट्रीय तूफान केंद्र के मुताबिक बुधवार दोपहर को तूफान ने फ्लोरिडा के मेक्सिको बीच पर पहली दस्तक दी। मध्य अमेरिका में पिछले सप्ताह के आखिर में तूफानी बारिश और बाढ़ से 13 लोगों के मारे जाने की खबर है। ये तूफान 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। फ्लोरिडा के गवर्नर रिक स्कॉट ने कहा है कि ये अकल्पनीय विनाश की चेतावनी है। उन्होंने इसे 100 सालों में सबसे बुरा तूफान बताया है। बांग्लादेश की एक अदालत ने 2004 में मौजूदा प्रधानमंत्री शेख हसीना की एक रैली पर ग्रेनेड हमला करने के जुर्म में 2 पूर्व मंत्रियों सहित 19 लोगों को मौत की सजा सुनाई है। इसके अलावा विपक्षी नेता तारिक रहमान सहित अन्य लोगों को जेल की सजा दी गई है। ऑस्ट्रेलिया सरकार अपनी धार्मिक आजादी को लेकर की गई समीक्षा में धार्मिक स्कूलों को समलैंगिक छात्रों को दाखिला ना देने का अधिकार दे सकती है। रुडॉक समीक्षा ने धार्मिक स्कूलों को जेंडर और सेक्सुअल ओरिएंटेशन के आधार पर छात्रों को दाखिला ना देने के लिए कानून में छूट देने की सिफारिश की है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विदेश मंत्री अलेक्जेंडर डाउनर ने बीबीसी को बताया कि इस मुद्दे पर सरकार को दखल देने की जरूरत नहीं थी।
Australia is a pretty liberal country, but on the other hand, we don't have a state ideology.
ऑस्ट्रेलिया एक बहुत उदार देश है, लेकिन दूसरी ओर हमारे देश की कोई विचारधारा नहीं है। सरकार सब कुछ निर्धारित नहीं करती है, व्यक्ति निर्णय ले सकते हैं। आपको अपने बच्चे को ऑस्ट्रेलिया में एक धार्मिक स्कूल में भेजने की जरूरत नहीं है, और आपको अपने बच्चे को ऐसे स्कूल में भी भेजने की जरूरत नहीं है जो समलैंगिक लोगों के खिलाफ भेदभाव कर सके, ये अनिवार्य नहीं है। ये थे ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विदेश मंत्री अलेक्जेंडर डाउनर के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। भारत के पूर्वी राज्य ओडिशा के अधिकारियों ने तट पर एक गंभीर तूफान के खतरे की वजह से 3 लाख लोगों को इलाके से निकाला है। तूफान तितली की वजह से भारी बारिश की आशंका है, और गुरुवार की सुबह 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के साथ तूफान अपनी दस्तक देगा। अनुमान है कि तूफान की वजह से काफी संख्या में पेड़ उखड़ेंगे और कुछ तटीय घरों को भी नुकसान पहुंच सकता है। बिजली की आपूर्ति में भी बाधा आ सकती है। ज्वार बढ़ने की चेतावनी जारी की गई है, और ओडिशा और पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश के निचले इलाकों में बाढ़ आ सकती है। कई ट्रेनों और उड़ानों को रद्द कर दिया गया है और एक प्रमुख बंदरगाह को बंद कर दिया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उन्होंने सऊदी पत्रकार के गायब होने के बारे में उच्चतम स्तर पर सऊदी अरब के अधिकारियों से बात की है। एक हफ्ते पहले इस्तांबुल में सऊदी वाणिज्य दूतावास में जाने के बाद से जमाल खशोगी को नहीं देखा गया है। व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से बात करते हुए ट्रंप ने इस मामले पर जानकारी दी।
I would be certainly concerned, and in fact, we have a call in to his wife. His wife wrote us a letter.
मैं काफी चिंतित हूँ, और हमने उनकी पत्नी को भी फोन किया है। उनकी पत्नी ने मुझे और मेरी पत्नी को पत्र भी लिखा है। हम उनके संपर्क में हैं और उन्हें व्हाइट हाउस लाना चाहते हैं। ये एक बहुत दुखद स्थिति है, और हम इसकी तह तक जाना चाहते हैं। ये थे अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। अमरीकी शेयर बाजारों ने फरवरी के बाद एक दिन में अपनी सबसे बड़ी गिरावट देखी है। 3 मुख्य शेयर सूचकांक सभी 3% से गिरावट के साथ बंद हुए। विश्लेषकों का कहना है कि चौथी तिमाही की कमाई के आंकड़ों के शुक्रवार को प्रकाशन की वजह से शायद ऐसा हुआ है। बीबीसी समाचार।
बी बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे सभी श्रोताओं को दिनेश उप्रेती का नमस्कार। सुन सकते हैं लाइव नमस्कार भारत में। सबसे पहले बात रफाल डील पर गर्मा रही सियासत की। कल पहले सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी सरकार से पूछा कि वह बताए कि उसने रफाल डील कैसे की, और इसके कुछ घंटों बाद जब रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण फ्रांस के 3 दिवसीय दौरे पर जा रही थी तो उससे ठीक पहले फ्रेंच वेबसाइट मीडिया पार्ट ने दावा किया कि उसके पास वो दस्तावेज मौजूद हैं जिनसे ये साबित होता है कि फ्रांसीसी एविएशन कंपनी दसा को रफाल सौदा हासिल करने के लिए अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस डिफेंस से गठजोड़ दिखाना पड़ा था। इस मुद्दे पर मैंने कुछ घंटे पहले पेरिस स्थित पत्रकार बैजू नरावने से फोन किया और मीडिया पार्ट के दावे के बारे में पूछा।
देखिए, मीडिया पार्ट का कहना है कि उनके पास एक डॉक्यूमेंट है। वो डॉक्यूमेंट मैंने खुद देख करके जांच नहीं किया है, लेकिन जनरली मीडिया पार्ट जो है बहुत ही रिलायबल वेबसाइट है। उन्होंने बहुत सारी चीजें, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स पब्लिश की है, सिर्फ राफाल के बारे में नहीं, लेकिन कई मुद्दों पे जो फ्रांस की गवर्नमेंट के बारे में है या जो अंदर के सीक्रेट गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्होंने कई बार पब्लिश किए हुए हैं और उनकी एक्यूरेसी बहुत बड़ी है। तो उन्होंने ये दावा लगाया है कि उनके पास ऐसी डॉक्यूमेंट्स हैं जो दिखाती हैं कि दासों के ऊपर दबाव था। अगर उन्हें कॉन्ट्रैक्ट चाहिए था रफाल डील के लिए तो अंबानी की फर्म को ही लेना चाहिए था, और उन्होंने दो शब्द इस्तेमाल किए हैं, एक है इम्पेरेटिव और दूसरा जो है ऑब्लिगेशन। मतलब अगर वो ये ना करते तो उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता। अदले बदले की बात थी। उन्होंने जो कहा है कि कॉन्ट्रापार्टी, ये उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है फ्रेंच में, इसका मतलब अंग्रेजी में होता है क्विड प्रो को, आप कुछ दीजिए वापस में आपको कुछ मिलेगा। ये सौदे की बात थी।
फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद के हवाले से भी मीडिया पार्ट्स ने ही कुछ इसी तरह के आरोप लगाए थे, तो ये नए आरोप किस तरह से अलग है?
मिस्टर ओलांद ने कहा था कि हमें इसके बारे में चॉइस नहीं था। उन्होंने ये ऐसा हिंट दिया था, इंडियन पार्टनर का जो चॉइस था वो एक तरह की इम्पोजिशन थी, और अब जो मीडिया पार्ट कह रहे हैं उनके हाथ में है वो डॉक्यूमेंट भी यही कहता है। जो मीडिया पार्ट का आज का जो बयान है और जो हॉलैंड ने इंटरव्यू में कहा था, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं।
भारतीय रक्षा मंत्री कल रात ही 3 दिन के दौरे पर फ्रांस रवाना हुई हैं। ऐसे में इस रिपोर्ट की टाइमिंग को लेकर भी कुछ सवाल उठ सकते हैं क्या?
बिल्कुल, इस रिपोर्ट की जो टाइमिंग है वो बड़ी दिलचस्प वक्त पे आ रही है। एक तो नॉर्मली जब डिफेंस मिनिस्टर आती हैं वो प्रेसिडेंट के ऊपर उनका फॉर्मल कॉल होता है। अब वो डिफेंस मिनिस्टर यहाँ के रक्षा मंत्री को तो मिलने वाली हैं, बाकी सारे ऑफिशियल्स को भी मिलेंगी, लेकिन ये अजीब चीज है कि यहाँ के जो प्रेसिडेंट है इस वक्त वो पेरिस में मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब ये भी है कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो ऐसा इम्प्रेशन नहीं देना चाहती है कि फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं वो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर को इस वक्त रिसीव कर रहे हैं।
निर्मला सीतारमण के फ्रांस के दौरे और रफाल को लेके वहाँ फ्रांस की मीडिया में किस तरह का हाइप है?
एक बात तो सही है कि यहाँ की जो मीडिया है वो काफी नेशनलिस्टिक है, और जब रफाल के बेचने की जब बात हो जाती है तो वो ज्यादा अपने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते हैं। तो मीडिया पार्ट जो है वो ऐसा वेबसाइट है जो बाकी सारे न्यूज़पेपर्स वगैरह जो है उनसे थोड़ा अलग है, क्योंकि ये जो है वो इन्वेस्टिगेटिव वेबसाइट है, और यहाँ पर जो है नॉर्मली इतनी इसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है जितनी इंडिया में चर्चा हो रही है।
ये थी पेरिस से पत्रकार वैजू नरावने। उधर अमेरिका में चक्रवाती तूफान माइकल फ्लोरिडा में तबाही मचा रहा है। तटवर्ती इलाकों में तूफान की रफ्तार 250 किलोमीटर प्रति घंटा है। फ्लोरिडा के गवर्नर रिक स्कॉट ने इसे पिछले 100 साल का सबसे खतरनाक तूफान बताया है। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए सरोप्रिया सांगवान से।
तूफान माइकल अमेरिका के फ्लोरिडा शहर के तटों तक पहुंच गया है। ये तूफान श्रेणी 4 में तब्दील हो गया है, यानी अत्यधिक खतरनाक तूफान। राष्ट्रीय तूफान केंद्र के मुताबिक बुधवार दोपहर को तूफान ने फ्लोरिडा के मेक्सिको बीच पर पहली दस्तक दी। फ्लोरिडा के गवर्नर रिक स्कॉट ने कहा है कि ये अकल्पनीय विनाश की चेतावनी है। उन्होंने इसे 100 सालों में सबसे बुरा तूफान बताया है। मध्य अमरीका में पिछले सप्ताह के आखिर में तूफानी बारिश और बाढ़ से 13 लोगों के मारे जाने की खबर है। ये तूफान 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। हजारों लोगों को जगह खाली करने को कहा गया था, लेकिन कई लोग नहीं निकल पाए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि लोगों के लिए निकलना आसान नहीं है।
One of the things that must be said is it's not so easy for some of these people to leave. Some of the areas.
एक बात ये है कि इन लोगों में से कुछ के लिए इलाका छोड़ना इतना आसान नहीं है। कुछ क्षेत्र बहुत गरीब हैं। बिना किसी आवश्यक धन के किसी व्यक्ति के लिए छोड़ना आसान नहीं है। तो हमने बसों को भेजा है। हम बहुत तरह से कोशिश कर रहे हैं लोगों को इलाके से निकालने की। माइकल तूफान अमेरिका के पूर्वी तटों पर तेजी से बढ़ेगा और इलाके में भारी बारिश होगी। ये वही इलाका है जो पिछले महीने तूफान फ्लोरेंस की तबाही से उबर नहीं पाया है। राष्ट्रीय तूफान केंद्र ने नई चेतावनी जारी की है कि तटीय इलाकों के निवासी शांत वातावरण देखकर बाहर ना निकलें, क्योंकि खतरनाक हवाएं बहुत तेजी से बढ़ेंगी। फ्लोरिडा में 370,000 से अधिक लोगों को इलाका खाली करने और ऊंची जगहों पर जाने का आदेश दिया गया है, लेकिन अधिकारियों का अनुमान है कि वास्तव में बहुत कम लोगों ने ही इलाका छोड़ा है। गवर्नर रिक स्कॉट ने चेतावनी दी है कि अब निकलने का वक्त खत्म हो गया है।
Now the storm is here, it is not safe to travel across the panhandle. If you are in a coastal area, do not leave your house.
अब तूफान यहाँ आ चुका है, इसलिए फ्लोरिडा में यात्रा करना सुरक्षित नहीं है। यदि आप तटीय क्षेत्र में हैं, तो अपना घर न छोड़ें। तटीय क्षेत्रों से निकलने का समय आकर चला गया है। स्थानीय अधिकारियों की सुनिए। यदि आप इनलैंड काउंटी में हैं, तो आपके पास आश्रय लेने के लिए एक आखिरी मौका हो सकता है, लेकिन तभी जब स्थानीय अधिकारियों को ये सुरक्षित लगे। अगर आपने इलाके से निकलने का फैसला नहीं किया है, तो कृपया आश्रय के लिए जगह खोजें, शरण की जगह खोजें। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी के निदेशक ब्रॉक लांग ने व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति से कहा है कि वे 2001 से पहले बनाई गई इमारतों को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि वे इस तूफान का सामना करने में सक्षम नहीं हैं।
रिपोर्ट सुना रही थी सर्वप्रिया शांगवान।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
इधर भारत में ओडिशा में चक्रवाती तूफान तितली को लेकर लोग दहशत में हैं। ये तूफान कुछ ही देर पहले ओडिशा के तटवर्ती इलाकों से टकराया है। इसी मुद्दे पर भुवनेश्वर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं स्थानीय पत्रकार संदीप साहू। संदीप जी, क्या है ताजा अपडेट?
देखिए, चक्रवाती तूफान तितली का लैंडफॉल का जो प्रोसेस है वो सुबह करीब 4:30 बजे शुरू हुआ है और अगले 1.5-2 घंटों में ये पूरी तरह से लैंड में प्रवेश कर जाएगा। और लैंडफॉल के समय इसकी गति जो थी 126 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जो अनुमान से थोड़ा सा कम था, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले भुवनेश्वर के जो मौसम विभाग के दफ्तर है उसमें डायरेक्टर है HR विश्वास, उन्होंने बताया कि लैंडफॉल के बाद हवा की गति और बढ़ेगी और इसके प्रभाव में गंजाम जिले में और बाकी लगभग सभी जिलों में कल रात से ही बारिश हो रही है। और जैसे जैसे पूरी तरह से लैंड में प्रवेश कर जाएगा तूफान, उसके बाद से रेनफॉल जो है बारिश की गति काफी बढ़ेगी और अगले
तो संदीप जी प्रशासन ने इससे निपटने के लिए क्या क्या एहतियाती कदम उठाए हैं?
देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कल रात तक करीब 3 लाख लोगों को जो तटीय इलाके में रहते हैं, समुन्द्र के पास बसे हुए हैं, उनको वहां से लेकर के सुरक्षित स्थानों पर रखा गया है, जहां पर उनके लिए खाने के लिए और पीने के लिए पानी का सारा इंतजाम किया गया है। और NDRF और ODRF के जो टीम्स हैं, बोट और दूसरे उपकरण के साथ सभी जगह तैनात कर दिए गए हैं, जहां जहां से तूफान गुजरने वाला है।
क्या अनुमान लगाया जा रहा है कि कितने लोग इससे प्रभावित होंगे या कितने लोगों को हटाया गया है?
देखिए 3 लाख लोगों को हटाया गया है, लेकिन जो प्रभावित होने जा रहा है वो तो शायद करोड़ों में आएंगे, क्योंकि पूरा जो तट है 480 किलोमीटर का उड़ीसा में, वो करीब करीब पूरा तट इससे प्रभावित होने वाला है। और इसके अलावा अंदरूनी इलाकों में भी काफी बारिश होगी अगले कुछ घंटों में, क्योंकि लैंड में आने के बाद ये रिकर्व करेगी और पश्चिम बंगाल की तरफ आगे बढ़ेगा।
बहुत शुक्रिया संदीप जी, हम ताजा अपडेट के लिए आपके पास आते रहेंगे। जयपुर में जीका वायरस के संक्रमण के 29 मामलों की पुष्टि के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और राजस्थान सरकार का दावा है कि उन्होंने मिलकर इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान शुरू कर दिया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री कालीचरण सर्राफ ने कहा है कि कल कोई नया मामला सामने नहीं आया। सुनिए बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद की जयपुर से ये ग्राउंड रिपोर्ट।
मंगलवार तक जयपुर में जीका वायरस के 29 मामले सामने आने के बाद अब प्रशासन हरकत में आता नजर आता है। इसकी गंभीरता का अंदाजा राज्य के स्वास्थ्य मंत्री कालीचरण सराफ के इस बयान से होता है।
हमने सब अधिकारियों को ये निर्देश दिया है कि युद्ध स्तर पर जीका वायरस का मुकाबला किया जाए, लोगों को इसकी रोकथाम के लिए क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए इसके बारे में जानकारी दी जाए, प्रचार प्रसार किया जाए।
मच्छर पनपेगा जहाँ जीका फैलेगा वहाँ, ये एक सरकारी पैम्फलेट की सुर्खी है। इस तरह के पैम्फलेट घर घर में बांटे जा रहे हैं। प्रशासन के अभियान की खास टारगेट महिलाएं हैं, श्री सराफ कहते हैं।
जो गर्भ में बच्चा है उस पे इसका गलत इम्पैक्ट पड़ता है, इसलिए सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन जो विभाग का है वो गर्भवती महिलाओं पर है।
जयपुर का शास्त्री नगर मोहल्ला जीका वायरस से सबसे अधिक प्रभावित है। इस अभियान का लोगों पर अब तक कितना असर हुआ है, यही जानने के लिए मैं शास्त्री नगर की एक कच्ची बस्ती पहुंचा।
मैं इस समय जयपुर की कच्ची बस्ती में हूं। ये बड़ी घनी आबादी है यहाँ पर, और यहाँ पर ओपन ड्रेनेज भी है, लोग काफी संख्या में यहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ पर जो रहने वाले हैं उनसे हम कुछ लोगों से बात करेंगे। तो आप यहीं के रहने वाली है ना?
यहाँ के रहने वाले हैं।
तो जीका वायरस के बारे में कुछ पता है आपको? बीमारी फैली है अभी
तो, ये मच्छरों से गंदी वाड़ों से फैल रही है, ये कचरा उठाने के लिए नहीं आते, आवाज देते हैं इनको, आवाज देते हैं गाड़ी वालों को, ये जो झाड़ू लगाने के लिए आते हैं झाड़ू तो लगाते नहीं है, वैसे हमारे घरों में से कचरा लेके आते हैं वो भी डालते हैं तो वो भी बच जाते हैं, क्या हम तो नहीं ले हुए कचरा।
ये प्रशासन के लोग आए आपसे बात करने के लिए कि बताने समझाने की यहाँ जीका वायरस फैला?
आज आए थे औरतें आई थी, लेडीज आई थी, 4-5 आए थे, उन्होंने कहा पानी दिखाओ आपका, पानी में कीड़े हो रहे तो कीड़े का पानी को डालो और आप सफाई का पानी भरो।
पानी यहाँ पर मेन समस्या है, और जो ये जो खुले हुए नाले हैं वहाँ पर मच्छर पैदा होते हैं, ये इनकी खास समस्या है, गंदगी इनकी खास समस्या है। और इसी बस्ती के बिल्कुल करीब शास्त्री नगर में 29 में से 26 वायरस के जो केसेस हैं वो सामने आए हैं। प्रशासन के लोग यहाँ पर आए थे ऐसा इन्होंने बताया, लेकिन इन्हें अच्छी तरह से अभी तक नहीं मालूम है कि जीका वायरस होता कैसे है, फैलता कैसे है और उसकी रोकथाम के लिए क्या कोशिश करनी चाहिए।
कल कोई नया मामला सामने नहीं आया, लेकिन प्रशासन चौकन्ना है। अब तक 400 से अधिक नए ब्लड सैंपल टेस्ट के लिए भेजे जा चुके हैं, जिनकी रिपोर्ट कुछ दिनों में आनी है। 3 साल पहले ब्राजील में इससे सैकड़ों लोग पीड़ित हुए थे। जुबैर अहमद, बीबीसी जयपुर।
अब बात ऐसे विषय की जिसका सरोकार हमसे, आपसे, हम सभी से है। ग्लोबल वार्मिंग यानी धरती के तापमान को लेकर समय समय पर रिपोर्ट आती रहती है, लेकिन हाल ही में आई संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट खबर से अधिक चेतावनी के रूप में सामने आई है। रिपोर्ट में वैज्ञानिकों ने ग्लोबल वार्मिंग पर रोक लगाने के लिए तुरंत अभूतपूर्व कदम उठाने को कहा है। यहाँ तक कि वैज्ञानिकों ने इसे आखिरी चेतावनी बताया है। हालात कितने गंभीर हैं और इसकी वजह से किन देशों के सामने खतरा है, इस बार दुनिया जहान में वासिले राय ने यही पड़ताल की है।
दुनिया जहान। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के 6 दिन बाद पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले आला वैज्ञानिकों ने दुनिया को कड़ी चेतावनी दी। 3 साल के गहन शोध और 1 हफ्ते तक दक्षिण कोरिया के इंचियोन शहर में तमाम सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ मंथन और बहस के बाद एक रिपोर्ट जारी की गई। ये रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यानी IPCC ने जारी की है और लगातार गर्म होती दुनिया पर नजर रखने वाले वैज्ञानिकों ने इसे आखिरी चेतावनी बताया है। लंदन में मौजूद BBC के पर्यावरण संवाददाता नवीन सिंह खड़का के मुताबिक ये रिपोर्ट आगाह करती है कि स्थितियां नहीं बदली तो दुनिया के कई हिस्सों में हालात भयावह हो जाएंगे।
कार्बन अगर इसी हिसाब से बढ़ता गया तो देखिए जीना हराम हो जाएगा, तो इसीलिए खास करके गरीब मुल्क जो हैं और जो टापू देश हैं और आर्कटिक, ये तीन जो कैटेगरीज में हैं, लोग रह नहीं पाएंगे, जी नहीं पाएंगे।
सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट यानी CSE के क्लाइमेट चेंज डिवीजन की प्रोग्राम मैनेजर डॉक्टर विजेता रतानी कहती है,
IPCC रिपोर्ट हमें ये कह रही है कि ये 1 डिग्री टेम्परेचर क्रॉस हो चुका है, 1 डिग्री में अगर ये हालत है दुनिया की तो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड में बहुत और गंभीर रूप ले लेगा।
और अब खतरा ये है कि यही रफ्तार रही तो तापमान 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है। जिस वक्त ये रिपोर्ट जारी की गई तब दुनिया में सबसे ताकतवर समझे जाने वाला मुल्क अमरीका माइकल तूफान से बचाव की कोशिश में जुटा था। इसके पहले सितंबर में आए फ्लोरेंस तूफान ने अमेरिका में लाखों लोगों को प्रभावित किया था। साल 2015 में पेरिस में दुनिया भर के देशों ने एक समझौते पर सहमति जताई, लेकिन साल 2017 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समझौते से किनारा कर लिया।
My solemn duty to protect America and its citizens.
अमेरिका और इसके नागरिकों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। यूनाइटेड स्टेट पेरिस के जलवायु समझौते से अलग हो रहा है।
ट्रंप ने चीन और भारत जैसे देशों का हवाला देते हुए समझौते की शर्तों पर सवाल उठाए।
Under the agreement, China will be able to increase these emissions.
इस समझौते के तहत चीन उत्सर्जन को 13 सालों तक बढ़ाता रहेगा। वो 13 साल तक जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर पाएंगे।
जब ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करने वाले ताकतवर देश ऐसा रुख रखेंगे तो क्या संयुक्त राष्ट्र की कोशिशों को अमली जामा पहनाया जा सकेगा? इस सवाल का जवाब पर्यावरण मामलों के विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार सोपान जोशी कुछ यूं देते हैं।
संयुक्त राष्ट्र में इसकी बातचीत होती है, सभी देशों की सरकारें वहाँ ऐसे लोगों को भेजती हैं जो कूटनीति से बात ऐसी करें जिससे लगे कि वो सब सचेत हैं, लेकिन जब करने का समय आए तो अपने ऊपर कम से कम जिम्मेदारी लें।
डॉक्टर विजेता की राय है कि अमेरिका के समझौते से बाहर आने के बाद दूसरे देशों पर दबाव कई गुना बढ़ गया है।
अब जब US ने विड्रॉ कर दिया है तो बिल्कुल सामान्य सी बात है कि बाकी देशों के लिए फिर बहुत प्रेशर है कि कौन वो जगह पूरी करे।
तापमान को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रखने की तरफ बढ़ने में दिक्कतें और भी हैं। वैज्ञानिक ऊर्जा हासिल करने और जमीन के इस्तेमाल के तरीकों में बड़े बदलाव की बात कर रहे हैं। शहरों की जीवन शैली के साथ उद्योगों को चलाने के तरीके भी तब्दील करने होंगे। नवीन सिंह खड़का कहते हैं कि बात सिर्फ कार्बन उत्सर्जन पर रोक लगाने से नहीं बनेगी।
जो कार्बन उत्सर्जन हम करते हैं ये सब रोक दें, इससे सिर्फ नहीं होने वाला। ऐसी तकनीक जो हवा में या फिर वायुमंडल में जो कार्बन जा चुका है उसे भी सोच ले, उसे सोचकर स्टोर करना है, ये टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। अगर ये हो पाता है तो जो ये 1.5 डिग्री का लक्ष्य है ये शायद प्राप्त हो।
इन सब उपायों को अमली जामा पहनाने के लिए बहुत बड़े बजट की जरूरत है। नवीन सिंह खड़का को सुनिए।
ग्लोबल GDP का जो है 2.5% पैसा इसमें जाना है, $2.5 trillion हर एक साल जाना है, बहुत ही बड़ा पैसा है।
लेकिन वैज्ञानिकों का दावा है कि अगर बाधाओं की वजह से दुनिया अब आंखें बंद करके बैठेगी तो बाद में खर्च कई गुना बढ़ चुका होगा। वो आगाह करते हैं कि तापमान बढ़ता रहा तो दुनिया के दोनों ध्रुवों पर बर्फ पिघलने की रफ्तार तेज होगी, समंदर का जल स्तर बढ़ जाएगा, मालदीव और प्रशांत क्षेत्र के कई द्वीपीय देशों का अस्तित्व खतरे में होगा। दिक्कतें अमरीका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में भी होंगी, लेकिन नवीन सिंह खड़का को अफ्रीका और एशिया की चुनौतियां ज्यादा मुश्किल दिखती हैं। भारत के सामने मौजूद खतरों पर सोपान जोशी कहते हैं,
भारत जैसे देश के लिए सबसे बड़ा संकट पानी का होगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी इस उपमहाद्वीप में बसती है और उसकी जान मानसून नाम के तोते में फंसी है।
दिन ब दिन बढ़ते खतरे के बीच बातें सिर्फ मायूसी की नहीं है। डॉक्टर विजेता कहती हैं कि वैज्ञानिकों ने उम्मीद की खिड़की की तरफ भी इशारा किया है।
1.5 डिग्री सेंटीग्रेड अचीव करना बहुत मुश्किल है, लेकिन IPCC खुद ही हमें होप दे रही है, हमें आश्वासन दे रहा है कि ये असंभव नहीं है।
ये कितना मुमकिन है, इसका सही इशारा दिसंबर में तब मिलेगा जब दुनिया भर के देश पोलैंड में पेरिस समझौते की समीक्षा के लिए बैठेंगे। लेकिन क्या सारी दुनिया को सरकारों के भरोसे ही बैठे रहना चाहिए?
अब देखिए, लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से हम जीते हैं उसे ही चेंज करना है। अगर आप मांस खा रहे हैं जिस मांस की वजह से ये कार्बन उत्सर्जन ज्यादा हो रहा है, और देखिए गाड़ी, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी कम चलाएं, हो सके तो मास ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की प्रयोग करें।
ग्रीन पीस की कैसा कौसेनन ऐसी ही समझ विकसित करने का आग्रह करते हुए कहती हैं कि वैज्ञानिक शायद बड़े अक्षरों में लिखना चाहते हैं, एक्ट नाउ इडियट्स। अल्लामा इकबाल के शब्दों में थोड़ी तब्दीली करके इसका मायना समझाएं तो ये इस तरह होगा, न समझोगे तो मिट जाओगे दुनिया वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में।
और अब जान लेते हैं दिल्ली से छपे अखबारों की आज की सुर्खियां क्या हैं।
दिनेश, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि वह रफाल विमानों की खरीद में किस तरह से फैसले लिए गए, क्या प्रक्रिया रही, उस सब की जानकारी सरकार कोर्ट को दे। और इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर है जहां बताया गया है कि दिल्ली पुलिस के पास 800,000 लीटर शराब पड़ी है, जिसकी वजह से जगह भी कम पड़ने लगी है, और दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को ये जानकारी दी है। मतलब जो भी उन्होंने इलेक्शंस के वक्त और वैसे जहां से भी शराब जब्त की है वो सब इस तरीके से स्टोरेज पड़ी है। CBSE ने 1700 स्कूलों पर जुर्माना लगाने का फैसला किया है, क्योंकि उन्होंने एक क्लास में 40 बच्चों को रखने के नियम को तोड़ा है, यानी 40 से ज़्यादा बच्चे क्लास में रख रहे थे। एक है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट कहती है कि हर 5 में से 2 महिलाएं यौन हिंसा की रिपोर्ट को करती ही नहीं है, मतलब वो किसी को भी नहीं बताती है, ना घर में ना कहीं बाहर। और ये सर्वे 15 से 49 साल की महिलाओं को लेकर किया गया है। और इसी से जुड़ी खबर कि अभी एक 7वीं महिला हैं जिन्होंने कहा है कि जो राज्य मंत्री हैं MJ अकबर, उन पर यौन हिंसा का आरोप लगाया है। और इंडियन एक्सप्रेस ने अपना एडिटोरियल भी ये छापा है कि MJ अकबर को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए।
इसी के तहत नवभारत टाइम्स में खबर छपी है, केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने कहा है कि मी टू अभियान के तहत लगाए जा रहे आरोपों को गंभीरता से लेना चाहिए।
बिल्कुल। और इसके साथ ही जो चुनाव आयोग ने जो अपना फैसला किया था कि सभी को अपना हलफनामे में उम्मीदवारों को आपराधिक पूरी हिस्ट्री देनी पड़ेगी, उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि जो मीडिया के थ्रू सब लोगों को अपना विज्ञापन देना होगा कि उनका क्या आपराधिक इतिहास रहा है। इसके अलावा एक खबर है कि दिल्ली के एक निगम के स्कूल में धर्म के आधार पर कक्षा का विभाजन हुआ है, मतलब उस कक्षा में मतलब हिंदू और मुसलमान में उन्हें बांट दिया गया, और जिसके बाद प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया गया।
बहुत बहुत शुक्रिया सरुप्रिया। और अब खेल की खबरें में ब्यूनस आयर्स में चल रहे युवा ओलंपिक खेलों में भारत के सौरभ चौधरी ने 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। और अब चलते चलते मुख्य समाचार सरुप्रिया सांगवान से।
BBC समाचार। तूफान माइकल अमेरिका के फ्लोरिडा शहर के तटों तक पहुंच गया है। ये तूफान श्रेणी 4 में तब्दील हो गया है, यानी अत्यधिक खतरनाक तूफान। बांग्लादेश की एक अदालत ने 2004 में मौजूदा प्रधानमंत्री शेख हसीना की एक रैली पर ग्रेनेड हमला करने के जुर्म में 2 पूर्व मंत्रियों सहित 19 लोगों को मौत की सजा सुनाई है। भारत के पूर्वी राज्य ओडिशा के अधिकारियों ने एक गंभीर तूफान के खतरे की वजह से 3,00,000 लोगों को इलाके से निकाला है। तूफान तितली की वजह से भारी बारिश शुरू हो गई है, और गुरुवार की सुबह 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के साथ तूफान ने अपनी दस्तक दी। ऑस्ट्रेलिया सरकार अपनी धार्मिक आजादी को लेकर की गई समीक्षा में धार्मिक स्कूलों को समलैंगिक छात्रों को दाखिला न देने का अधिकार दे सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उन्होंने सऊदी पत्रकार के गायब होने के बारे में उच्चतम स्तर पर सऊदी अरब के अधिकारियों से बात की है। अमेरिकी शेयर बाजारों ने फरवरी के बाद एक दिन में अपनी सबसे बड़ी गिरावट देखी है। 3 मुख्य शेयर सूचकांक सभी 3% से गिरावट के साथ बंद हुए। विश्लेषकों का कहना है कि चौथी तिमाही की कमाई के आंकड़ों से शुक्रवार को प्रकाशन की वजह से शायद ऐसा हुआ है। न्यूयॉर्क में BBC संवाददाता का कहना है कि अमरीकी व्यवसाय अभी भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस तिमाही में कंपनियों के लाभ का रिकॉर्ड पिछली तिमाही की तरह नहीं है। BBC समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे राजेश चौहान। आपसे अगली मुलाकात दिन भर में शाम के वक्त 7:30 बजे होगी। तब तक के लिए खबरों के अपडेट के लिए आपके साथ है BBCHindi.com का पन्ना। दिनेश उप्रेती को दीजिए अनुमति। नमस्कार।